نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2023 ڈی کیو 2023 آج اس کا پارہ نمبر 8 کریں گے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ گزرتا جا رہا ہے اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے حق میں بہترین طریقے سے حجت بنے اور جو ساتھی اس دورہ قرآن کو کہیں سے بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کا اجر بھی باقی ساتھیوں کی طرح باقی رہے پارے کا نام ہے ولو اننا اور اگر ہم بڑا ہی مبہم سا پارہ ہے اگر میں اس پورے پارے کا آپ کو سم اپ دوں یا تیاری کے دوران جو ایک بندے کے ذہن میں ایک فیلنگ آتی ہے نا تو اضطراب ہے الجھی ہوئی باتیں ہیں یعنی باتوں کے جال پورے پارے میں جس چیز پہ آپ کی بار بار توجہ جائے گی وہ کیا کہ باتیں ہی باتیں ہیں صحابہ کرام کی عظمت جو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے باتیں کم کی کام زیادہ کیا آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گفتار کے غازی تو بنتے ہیں لیکن کردار کے غازی بن نہیں پاتے تو صحابہ کرام کی عظمت میں اگر آپ اس موضوع کو لیں تو باتوں کے جال میں صحابہ نہیں الجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے جس معاشرے میں بھیجے گئے وہاں لوگوں نے وحی کو تو چھوڑ دیا تو اس کے جواب میں اس کے بدلے میں قیل و قال میں پڑ گئے پورے پارے میں اگر باتوں کے جال کو میں عربک میں بول دوں نا قیل و قال اس نے یہ کہا وہ یہ کہتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا کون کیا کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہ ہے آج کے بارے میں بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہی سے زیادہ ان کے معاشرے میں جو باتیں مشہور ہو چکی تھی جو معروف ہو چکی تھی ان کا تذکرہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ ایک شریعت بنا رکھی تھی اور ان کو اس شریعت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہی مشکل لگ رہا تھا اس پورے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلانے اور اس کے غیر مؤثر ہونے کی کوشش کی بات سمجھ بھی کچھ آتی تھی اور کچھ نہیں بھی آتی تھی اگر تو جو سمجھ آئی ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی یہی پریٹینڈ کرتے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آتی عمل کیا کریں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کیا یہ باتیں آپ کو آج کی نہیں لگ رہی خاص میں ہم دیسی کلچر کے لوگ قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف ثواب کے لیے یا حصول ثواب یا اصال ثواب یعنی زندگی میں جو اپنے لیے پڑھتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے ثواب اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے حصول ثواب اب جس چیز کو آپ نے پڑھا تو صحیح لیکن آپ نے اس کو سمجھا نہیں تو جب کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ سناؤ کیا پڑھا کیا سنا تو جواب میں کیا کہیں گے پتہ نہیں آپ اس وقت یہاں سننے کے لیے آتے ہیں اور کوئی آپ کی دوست یا آپ کے گھر والے آپ سے پوچھے اچھا سناؤ کیا پڑھ کے آئی ہو تو آپ کے پتہ نہیں کیونکہ سمجھ نہیں آیا چونکہ دھیان نہیں تھا چونکہ توجہ نہیں تھی تو یاد رکھیے کہ وہ قومیں وہ معاشرے جو باتوں کے جال میں الجھ جاتے ہیں نا وہ پھر وحی الہی سے زیادہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں آج آپ کے میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسلام کا نام بہت بڑا نام ہے ایون جو لوگ آج آپ کو نہیں مانتے یعنی آپ کو نبی نہیں مانتے یا آپ پہ ایمان نہیں لاتے نا وہ بھی آپ کی عزت ضرور کرتے ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے شخص تھے مین آف دی ریولیوشن ریولیوشنری پرسن تھے لیڈر تھے آپ نے دنیا کو ہلا دیا دنیا میں تبدیلیاں رکھی لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ میں ڈھلے اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ غارِ حرا سے آنے والا شخص جو آج بالکل تنہا آ رہا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ اللہ کی مدد تو ہوگی لیکن اللہ کے بندے بھی ساتھ لگیں گے جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پہنچایا گیا سمپل دعوت دی اللہ کے نبی نے ڈے ون سے 13 سال تک بڑی پلین کلیئر اینڈ کرسٹل کلیئر ٹروتھ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اللہ کو ایک مانو فلاح پا جاؤ گے بس ختم یہی کلمہ تھا अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाकर भी यही कहा, कोहे सफ़ा पे खड़े होकर भी यही कहा, हरम में आकर अगर कभी बात करने का मौका मिला तो यही कहा। और सहाबा को यही कलमा समझ आ गया, अगले सवालों की तो ज़रूरत ही नहीं। जब आपने जॉब पे साइन जो कर दिए तो उसके बाद क्या मेरी बात और क्या तेरी बात, जो कहेंगे वो करना है। जो बंदा अल्लाह सुब्हान तआला की बात को सुनकर उस पर साइन कर देता है कि ठीक है आई एम रेडी, तो फिर उसको ज़्यादा सवाल नहीं पूछने पड़ते। ऐसे मुआशरे में जब इर्द गिर्द के लोगों को देखा तो वो ख़ानदान, बिरादरी और न जाने किस किस के सहर में शिकार थे। आज भी किसी गैर मुस्लिम से आप इस्लाम की बात करें, जैसे कल मेरी रात किसी से बात हुई, किसी की भेंट थी, तो उसने खुद ही कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से हैं, इन्होंने कहा ये छोटी सी आई थी हमारे घर। और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप कब से मुस्लिम्स में हैं तो आपने कैसा पाया, तो कहने लगी, बहुत तारीफ़ें करने लगी, कह रही मैं भी मेरा शौहर भी बहुत इम्प्रेस हैं, बड़े मुतासिर हैं मुसलमानों से ये वो। जब मैंने उसके दिल में ये नरम गोशा देखा तो मैंने कहा व्हाट स्टॉप्स यू, फिर आपको क्या चीज़ रोकती है, तो कहती ख़ानदान, बिरादरी, ज़ात, माशरा। मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप अपने हस्बैंड को लेकर आएँ, हम आपकी दावत करते हैं, अगर आपके हस्बैंड भी आपके साथ मुत्तफिक हैं तो ख़ानदान को बताने की क्या ज़रूरत है, देखी जाएगी। बारह, जो बुत होता है ना बहुत बड़ा, वो ख़ानदान और बिरादरी का, लोग क्या कहेंगे ना बताओ, कौन पूछ रहा है आपको, आज भी आपने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आप रोज़े से हैं कि नहीं, क्या आपकी बिरादरी इस वक्त आपसे पूछ रही है। लेकिन शैतान एक बहुत बड़ा खौफ देता है, अपनी बातों में फंसाता है। यानी आज अभी हम सूरह आल इमरान का जो हिस्सा पढ़ेंगे ना, हर दूसरी तीसरी याद के बाद मैं कहूँ ना कहूँ आपका दिल गवाही देगा कि बातों के जाल हैं, उलझी हुई बातें, डिस्टॉर्टेड बातें, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा, मैनिपुलेटेड बातें, ऊपर कुछ नीचे कुछ। कहते हैं कि लोहे पे सोने का पानी चढ़ाना, गोल्ड प्लेटेड लिख ले हम। और आगे से जब फिर हम सूरत अल आराफ शुरू करेंगे ना, तो उसमें तो आपको ये बहुत खुलकर शैतान की बातों की रोशनी में दिखेगा कि वो आज भी आपको मुझे अपनी बातों में उलझाता है। सहाबे कराम इन बातों में नहीं आते थे, और आज भी हर वो बंदा आपकी तरह जिसको ये यकीन हो जाता है ना कि अल्लाह की बात को सुन के, सुना के, इस पे गौर करके, अमल करके मुझे क्या मिलता है, वो फिर दूसरों की बातों में नहीं आता, वो पहुंच जाता। कोई रोके वो नहीं रुकता, कोई पाबंदी लगाए वो पाबंद नहीं होता, कोई मलामत करे तो ला तखाफून अल्लाउमत अलाइम की सूरत में वो बिल्कुल नहीं रुकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी माशरे के अंदर हद से ज़्यादा बिगाड़ हो जाए तो उस वक्त भेजे जाते हैं। ना सिर्फ ये कि हमारे प्यारे नबी, बल्कि इससे ऊपर भी अम्बिया कराम का यही किस्सा होता है। और इस अंधेरे में जब इंसानियत वाकई डूब गई, जब लगा कि इन लोगों को अब वाकई रोशनी की ज़रूरत है, तो फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को भेजा। पैदाइशी तौर पे आप सलीमुत फितरत थे, करीमुन नफ्स थे। आज आपके बच्चों में भी कुछ बच्चे बिल्कुल फितरी तौर पे बड़े बीबे से होते हैं, बड़े अच्छे, रूली, बड़े नाइस, सॉफ्ट स्पोकन, बात मानते हैं। और कुछ बच्चे बहुत इरिटेटिंग होते हैं, जिच विच करते हैं, हर बात में आपके लिए आजमाइश ही बने रहते हैं। बस अल्लाह के नबी फितरतन बहुत खूबसूरत इंसान थे, अल्लाह ताला ने शुरू से ही इसलिए माँ और बाप का सहारा छीन लिया कि फितरत की रोशनी में पले। सहाबे कराम की भी जो बहुत बड़ी खूबी दिखती है ना, वो फितरत की रोशनी में पले थे। ये बिल्कुल ऐसे प्योर चीज़, नथिंग एडिड। बाहर की दुनिया में आप जूस देखें तो बड़ा बड़ा लिखा होता है नथिंग एडिड, कुछ नहीं डाला गया और कुछ नहीं निकाला गया। वो दूध जो खालिस दूध था वो आपको मिल रहा है, और जो शरबत खालिस था वही आपको मिल रहा है। बिल्कुल नबी सल्लम फितरत की उस रोशनी में थे, और सहाबे कराम भी ऐसे ही थे, बिल्कुल उनके ऊपर किसी इज्म का नहीं था असर। आप देखिए उस दौर में रोम, आज भी आप रोम कहते हैं, क्रिश्चियंस थे, किसरा, रोमन्स एंड ईरानीस, मजूसी थे वहाँ के ज़्यादा लोग, यूनान, और इसी तरह से ईरान, फारस, ये बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, बड़ी बड़ी ताकतें थी। अल्लाह ने उन सारी इतनी आज के दौर की ज़ुबान में कहे कि सुपर पावर्स, तरक्की याफ्ता, वेल इक्विप्टेड, बहुत वहाँ गैजेट सब कुछ मिलता है, उसको छोड़कर मक्का की एक ऐसी बस्ती जो पहाड़ों में छुपी हुई थी, बैतुल्ला ना होता वहाँ तो किसी को उसका रास्ता भी ना पता होता, और फिर वहाँ से निकाल कर अपने प्यारे नबी को खजूरों की एक सरजमीन में क्यों भेज दिया। नबी भी हिजरत करके हबशा चले जाते, उस दौर का एक नॉन मुस्लिम मुल्क था, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को पहले मक्का, کی سادگی، پہاڑوں کے اندر رہ کر ایک ایمان والے کا ایمان کیسے گرو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں کھجوروں کی زمین کے پاس وہاں بھیج کر اس بات کا یقین دلا دیا انسانیت کو کہ آج بھی جو بندہ اور بچہ فطرت پہ رہے گا، کسی ماحول کا اثر نہ ہو اس پہ، تو وہ بڑی جلدی حق کو قبول کرے گا۔ معرفت حق پہ جو پچھلے بارے میں ہم نے باتیں کی تھی نا، وہ ساری اس جگہ نوٹ کر لیجئے گا کہ صحابہ کرام بالکل وہ کھیتی تھی جس میں کھاد نہیں ڈالی گئی، جس کو آرٹیفیشیل پانی نہیں دیا گیا، نقلی بارش نہیں ان کے اوپر کی گئی، بس ایک دفعہ ان کے کانوں پہ فطرت کی روشنی میں وحی کی آواز پڑی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آج ہم آج کے بارے کے ساتھ جس شخصیت کو دیکھنے لگے ہیں، وہ صدیق تو نہیں ہے لیکن وہ صدیقہ ہے، وہ اکبر تو نہیں لیکن وہ کبرا ہے، اور وہ ایک مرد نہیں وہ ایک عورت ہے، اور ان کا نام خدیجت الکبرا ہے۔ آج اس حقیقت کو پہلی دفعہ بہت سارے لوگ سنیں گے، جو میرا گمان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب پورا نام لکھا جاتا ہے تو حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبرا کہا جاتا ہے۔ یہ صدیقہ اور کبرا کیا ہے؟ صدیق اکبر کی فیمینن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا تجربہ ہوا، بڑا انیوژل تھا، ایک بشر کا ایک ملک سے ملنا، بات ہونا، یہ ایک انیوژل سی بات ہے۔ اللہ نہ کرے آج کسی کو جن چمٹ جائے تو وہ انیوژل نہیں ہو جاتا؟ تو جب کسی کو فرشتہ آ کر کہے کہ اقرأ باسم ربی کا، تو یہ بات کوئی چھوٹی تو نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے اثر میں آنے کے بعد گھر آتے ہیں، تو سب سے پہلے جس ہستی نے آپ کے اس پیغام کو آپ کی زبان سے سنا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو ایک عورت تھی۔ لکھیے، ویمن فرسٹ، ویمن لیوز، عورتوں کے حقوق۔ آج تک لوگوں نے شاید ہی اس بات کو محسوس کیا ہو کہ یہ دین اسلام جس پہ آج 2 بلین کے قریب لوگ ہیں، اس کی پہلی گواہ، اس کی پہلی وٹنس دینے والی ایک عورت تھی، اور اس کا نام خدیجہ تھا۔ خدیجہ کون تھی؟ فاطمہ کی ماں تھی۔ اور فاطمہ کون تھی؟ جن کے بارے میں ہم نے پارہ نمبر 5 میں پڑھا تھا۔ جس دن آپ کو یہ پارہ دیا، اسی دن مجھے ایک شیئرنگ ملی، کسی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں سن کر کیا کہا، میں آپ کو سناؤں گی۔ میں نے اسی دن رکھ لی کہ چلے میں اس کا کچھ حصہ کم از کم آپ کو تب پڑھاؤں گی جس دن حضرت خدیجہ پہ بات ہوگی۔ ابھی بس اتنی بات کر کے ہم پارہ شروع کریں گے۔ جو خدیجہ کا اصل کردار ہے نا، وہ ہم پارے کے بالکل مڈ میں سورۃ الاعراف میں کریں گے، جہاں اس سے مطابق آیتیں آئیں گی۔ لیکن بس آج اس خواہش کے ساتھ، اس سارے سلسلے میں آپ نے میں نے اپنے کان رکھنے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کہ اللہ ہمیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنا دے۔ تو لکھنے والی لکھتی ہیں کہ جب سے دور قرآن 2023 کا سفر شروع ہوا، میں منتظر ہوں کہ کب یہ موڑ آئے گا جب ذکر ہوگا اس عظیم ترین ہستی کا، جن کے بارے میں سننا، جن کے بارے میں پڑھنا، جن کے بارے میں بات کرنا میرے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تو آج پھر ان کا دل خوشی سے بھرے گا۔ وہ ہستی ہیں خدیجہ، میری ماں، امت کی ماں، میری محبت، ایک ایسی قابل احترام ہستی جن کی عزت ساتوں آسمانوں پر اللہ الکریم نے کی، ایک عورت عظمت کی بلندیوں پر کھڑی، محبت کا شاہکار جن کے احسانات کا بدلہ محسن انسانیت نہیں چکا سکے، ایک عورت، ایک علامت۔ محبت کرنے والی بیوی ہو تو کیسی ہو کہ 55 سال کی عمر میں، 55 ایئر کی ایج میں، غارِ حرا پر شوہر کی محبت میں کھانا پانی لے جاتی تھی، جبکہ شوہر اس وقت ایک عام انسان تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ نوٹ کیجئے یہ بات۔ آپ کہتے ہیں میرے شوہر نیک ہی نہیں، میں ان کے لیے روٹی کیوں پکاؤں، وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، تو میں ان کی خدمت کا اجر کہاں سے پاؤں؟ یعنی آپ سمجھیے ٹون ہے ہماری۔ خدیجہ جب غارِ حرا میں نبی کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، تو وہ محمد رسول اللہ کے لیے کھانا تو نہیں لے کے جاتی تھی، کیونکہ آج بھی لوگ نیک لوگوں کو نیک سمجھتے ہوئے ان کے لیے کھانا بڑے اہتمام سے بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا کہ نہ کھائے تمہارا کھانا مگر متقی۔ آپ بھی دعا کرتی ہیں وجعلنا للمتقین اماما، یہ تو ہے۔ لیکن خدیجہ کو اس وقت نبی کی خدمت کس بات کی وجہ سے اکساتی تھی؟ वो सवाब के लिए नहीं ये करती थी, वो हसूल बरकत के लिए भी नहीं करती थी, और वो ये भी नहीं करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा लीजिए उसे दुआ कीजिएगा। बहुत सारे लोग कोई भी नेकी करके फिर कहते हैं अच्छा दुआओं में याद रखिए, किसी को राशन पानी देते हैं, गरीबों को ज़कात का माल देते हैं, राशन के थैले देते हैं, फिर कहते हैं दुआओं में याद रखिए। आप पता है कि अइमा किराम में से किसी एक इमाम का फतवा है कि किसी को ज़कात दो और उसके बाद अगर तुम ये कहो कि अब ये ज़कात ले लो और मुझे अब दुआओं में याद रखना, तो ये किस्म का सूद है, आपने एक्स्ट्रा हक ले लिया। आज हम अपनी मासियों को अपने ही ज़कात के पैसे दे देकर क्या कह रहे होते हैं अब दुआओं में याद रखना, और वो बड़ी खुश हैं कि बाजी चलो तनख्वाह तो गुजारे की देती हैं ऊपर से बहुत देती हैं। ये जो किसी को नेक समझ कर हम कोई काम करते हैं ना, ये हमारा एक अच्छा गुमान होता है। लेकिन खदीजा एक ऐसी खूबसूरत बीवी थी कि जो शौहर को शौहर समझ कर उसकी खिदमत करती थी। अगले पारे में भी ये मौजू चलेगा ये आपको बता दूँ, क्योंकि आज हम चार लफ्ज़ पढ़ने के बाद अपने घर वालों का जीना धोबर कर देते हैं, और इल्ला माशाल्लाह इलाज कीजिए ना कि आप बीमार की बीमार बुरसी करती रहिए। अगर आपको अपने शौहर में या अपने घर वालों में बीमारी दिखती है, वो शिर्क की बीमारी है, वो गंदी से गंदी चीज़ की बीमारी है, तो फ़ौरन इलाज कीजिए, टेक द एक्शन। फिर तो आप कहते नहीं नहीं चुप चुप, घर ना टूटे, खराबी ना आए, तलाक ना हो जाए, नहीं। तो हज़रत खदीजा नबी सल्लम की बड़ी खिदमतगार बीवी थी, कोई नबी नहीं था, कभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के मुँह से ये नहीं निकला होगा कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि आप पहाड़ पर चढ़कर बैठ गए हैं और मैं बच्चे पालूँ, घर देखूँ, फिर आपका खाना भी लाऊँ। सोचिए ज़रा, और आप सोचिए कि उस वक़्त हॉट पॉट्स जैसे इतने खूबसूरत स्टरलाइज किस्म के बर्तन थे कि जिसमें गरम गरम और ठंडा ठंडा रहे, खाना किस में डालकर पहाड़ पर चढ़ती होंगी। तो सब्र तो कीजिए, किस तरह कोई लकड़ी के या पत्थर के डोंगे, कोई चीज़ें, कोई ग्लास की शक्ल कोई होगी, ढक्कन भी नहीं होगा जिसको हैंडल भी नहीं होगा, उसमें खाना संभालना डालना कितना मुश्किल होगा। और 55 ईयर, 55 साल की एक औरत इतनी स्टीप किस्म की ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है, वो खुद को कैसे संभालती होंगी। और अगर उन बर्तनों को, इन कटोरों को, इन मशकीज़ों में कुछ पानी डालकर संभाल भी लेती होंगी, तो वो बुलंद तरीन गारे हिरा पर कैसे चढ़ती होंगी। क्यों क्यों करती थी वो सब? वो किसी नबी की खिदमत तो नहीं कर रही थी कि उनको यकीन होता कि चलो भाई इसके बदले में जन्नत मिलेगी? वो तो एक आम इंसान अपने शौहर की मोहब्बत में इस तकलीफ़ को किस खुशी से अंजाम देती थी। आज भी गारे हिरा को चढ़ते हुए जवानों की जवानियां निढाल हो जाती हैं, इतनी बुलंदी पर चढ़ने से सर चकराने लगता है, चक्कर आते हैं। लेकिन शौहर की खिदमत का बदला क्या खूब मिला। क्या आज की हमारी बेटी जब हमारे घर से रुखसत होती है तो क्या हम उसको खदीजा का ये किरदार दिखाकर भेजते हैं? और क्या अपनी माँ और अपने घर की ख्वातीन जो पहले से शादीशुदा हैं उनके बारे में वो ये सारी गवाहियाँ दे सकती कि अम्मी अब्बू की बड़ी खिदमत करती हैं इसलिए मैं भी करूँगी, चाची चचा की खिदमत बड़ी करती हैं? हमारे पास अमली किरदार हों भी तो हमारे बच्चे कहते हैं आप तो स्टूपिड हैं, हम आपकी बेवकूफ़ों वाली ज़िंदगियाँ नहीं गुजारेंगे, या आप तो पता नहीं क्या थी दादी की इतनी गर्म सर सुनती रही, हमसे नहीं सुनी जाती, हम तो तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। फातिमा और खदीजा दोनों को अगर करें तो एक ही कह लीजिए कि जड़ से निकले हुए दो फूल थे। माँ जैसी थी है ना, बेटी भी वैसी है। आज अफसोस के साथ कहूँगी मैं, जैसी माएँ होती हैं बेटियाँ नहीं वैसी होती, तरबियत का असर है, गड़बड़ हो गई हमसे। पहले ऐसा होता था, कहते थे किसी के घर रिश्ता करना है उसकी नानी को देख लो जाके, जैसी नानी होगी ना वैसी बेटी होगी, नवासी भी वैसी होगी। आज ये गलत है, इसलिए कि बेटियाँ आंखें मटका कर हाथ घुमा के माओ को कहती हमने आप जैसे बेवकूफ़ नहीं बनना, बुद्धू हैं आप, आपको तो जवाब देना नहीं आता था, हमसे कुछ सीखे। वो माओ से नहीं सीखती, वो माओ को सिखाती है। और आप देखिए कि सात आसमानों की बुलंदियों से खदीजा को सलाम भेजा था। रूहुल अमीन जो मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं जिनका मुकाम इतना आला है, वो आजजी से आकर हज़रत खदीजा को सलाम देते थे कि अल्लाह के नबी गारे हिरा में थे तो हज़रत जिब्राइल ने कहा वो खदीजा आ रही हैं, फरिश्ते को दिख रहा था। अच्छा जब वो आ जाए ना तो उनको कहना कि खदीजा को अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसे महल की खुशखबरी दी है जिसमें शोर व गुल नहीं होगा, क्योंकि खदीजा ने ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें सही थी। जिनके लिए आसमानों से सलाम आते थे वो खदीजा की आज हम बातें करेंगे, जिनके लिए जन्नत के अंदर बुलंद जगहों पे मोतियों के महल की बिशारत आसमान से आती थी, और वो खदीजा जिसको खुशखबरी दी थी कि ना वहाँ सर दर्द होगा ना चक्कर आएंगे, क्योंकि जब वो गारे हिरा में चढ़ती होंगी तो ज़रूर चक्कर आते होंगे, जो दुनिया में सह जाता है उसके वहाँ के मामले आसान हो जाते हैं। कुछ तो दर्द उन्होंने भी सहा होगा। अल्लाह बंदे का हक नहीं रखता। आज आपको जिस मामले में तकलीफ़ आती है ना, अगर अल्लाह के लिए राज़ी करेंगे ना, अल्लाह के लिए सब्र करना, ये सूरह रात में सुनेंगे आप इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। जो अल्लाह के लिए सब्र करता है अल्लाह दुनिया में उस सारे सब्र का बदला देता है, और अल्लाह के नबी की ये सहाबिया इस बात की गम्माज हैं। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली ख़ैरा मिन्हा उम्मे सलमा। अपने शोहर से ये दुआ सीखती हैं जो वो नबी से सीख कर आए थे, और जब चंद दिन के बाद अबू सलमा का इंतकाल होता है तो पूरी इद्दत में ये दुआ मांगती रहती हैं, और दिल में कहती हैं भला अबू सलमा जैसा कौन मिलेगा। अव्वल मुहाजिर, हिजरत करके जाके हफ्शा भी हिजरत की और मदीना में भी की, और इधर इद्दत ख़त्म हुई और घर का दरवाज़ा नॉक होता है और आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का पैगाम लाते हैं कि उम्मे सलमा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं आपको निकाह का पैगाम दूँ। लोगों के रिश्ते रिश्ते कराने वालियाँ कराती हैं, झूठ सच बाद में खुलता है, और उनको पैगाम आता था कि आप रिश्ता डालिए। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बूढ़ी हूँ। तो कहा मैं कौन सा इतना जवान हूँ। कहा मैं बच्चों वाली हूँ। कहने लगे आपके बच्चे मेरे बच्चे होंगे। कहा मेरे मिजाज में सख्ती है, मैं कहीं ऐसे ही कोई अदा ना दिखा दूँ, गुस्से में कुछ बोल दूँ और वह आपके मुकाम नबूवत पे जद डाले। कहा मैं अल्लाह से दुआ करूँगा आपका मिजाज ठंडा हो जाएगा। आज दुआ कीजिए अल्लाह हमारे मिजाज ठंडे कर दे। अपने शोहरों के लिए क्यों दर्द बने हुए हैं, क्या सज़ा दे रहे हैं हम उनको। कभी अपने शोहर का तसव्वुर तो लाइए, जिसकी माँ ने उसको पाला पोसा किया और आज आप उसके लिए दर्द सर बने हुए। कई शोहर तो सिर्फ गले में डाला हुआ ढोल समझ के निभा रहे हैं हमें। हर एक अपने आप को पूछे मैं कैसी बीवी हूँ। आज जाके अपने शोहरों से पूछिए, फतवा लेकर आइए उनसे कि कल जन्नत में मेरी जाने की वजह आप बनेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा ना कि जिसका शोहर गवाही दे देगा उसके लिए। सबको दी से आती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों को जहन्नमी समझते हैं, पहले आप उनका इलाज तो कीजिए। और हज़रत खदीजा वो हस्ती थी कि जिसके बतन से फातिमा जैसी बतूल पैदा हुई, जो जन्नत की औरतों की सरदार है। और खदीजा वो थी कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि मर्दों में तो बहुत से कामिल पैदा हुए लेकिन औरतों में बस चार औरतें कमाल को पहुंची, उनमें से एक खदीजा थी, यानी 1 out of 4 जो अव्वलून सबिकून में थी, जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने कभी दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं किया। क्या बात करते हैं कहने वाले। किसी ने कहा कि खदीजा ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, नबी की कोई ज़रूरत ऐसी ट्रक छोड़ी नहीं जो पूरी ना हो। उनकी जज्बाती ज़रूरतें, उनकी जिस्मानी ज़रूरतें, उनकी अखलाक की ज़रूरतें, अखलाक से, किरदार से, मोहब्बत से, उन्होंने इतनी जगह बना ली थी नबी की ज़िंदगी में कि जगह ही ना छोड़ी। अल्लाह अकबर। आज हम कहते हैं हमें मिला ही क्या। खदीजा कहती थी मैंने भी दिया ही क्या। इस्लाम की जड़ों में खदीजा का पानी, नबी के किरदार में, आपके करैक्टर में खदीजा का माल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका उम्र का फ़र्क 15 साल। कहने वालों ने जो कहा, आप ज़रा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, बात शुरू हो गई है तो मैंने कहा मैं कर ही दूँ, बाद में पता नहीं किस मूड में होंगे आप। कहने वालों ने कहा कि अल्लाह के नबी को जो अल्लाह ने बचपन में ही माँ की ममता और बाप की बिपता से महरूम कर दिया, अल्लाह ने वो खदीजा की सूरत में पूरा किया। वो सिर्फ़ एक मुशफिक मोहब्बत करने वाली बीवी ही ना थी, वो अंदर से जिसको पंजाबी में कहते गुज्जी माँ, उनको अल्लाह के नबी के साथ जो नस्बत थी ना, वो आपका एहसास था। ये गारे हिरा में कोई खाना या बीवियाँ नहीं ले जाती, ये सिर्फ वो खुश नसीब बीवियाँ ले जाती हैं जिनको माँ वाली मोहब्बत हो जाती है अपने शोहरों से। और एक वक्त आता है हर बीवी अपने शोहर के लिए इतनी ही केयरिंग हो जाती है और हो जानी चाहिए जितनी एक माँ होती है। और तकाबुल देखिए कि 15 साल का फ़र्क था एज डिफरेंस। आज अगर आप में से किसी की सास या दादी नानी घर में है ना, जाके पूछिएगा नानी जब पहला बच्चा हुआ था तो आपकी एज क्या थी, आप हैरान होंगे। 13-13 साल की उम्र में आपकी नानियाँ माएँ बनी थी, तो बेटे और माँ के एज में क्या डिफरेंस था, 13 साल। तो नबी और खदीजा की उम्र में कितना फ़र्क था? आप कहते लो बड़ी उम्र है, क्या खुश करेगी, क्या दाएं दिखाएंगी। कभी सोचें, मैं तो इंशाल्लाह जन्नत में खदीजा से ज़रूर मिलने जाऊंगी। आपको जाना है तो नाम लिखा दें। कभी हम दुनिया में सीख जाएं ना इन औरतों से, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी ऐसे ही माल देगा। अगर आप अपने घर में सुकून नहीं दे सकती ना, तब हर नहीं देंगी। अब मैं सबसे माजरत से हूँ जो दिलों में बैठे हुए सवाल लेके, मियाँ ऐसा, फुला ऐसा, सास ऐसी, ससुर ऐसा, वो शराबी, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं तो अत्तय्यिबातुल्लतय्यिबीन इनकी बात कर रही हूँ। फितरी जोड़े, अगर गलत फैसले की भेंट आप चढ़ गई हैं, तो दुआ करके, हिकमत करके अल्लाह से या तो उनको ठीक कराइए या बदल लीजिए। लेकिन घर को इखाड़ा या मैदान जंग बनाना, ये सारी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। आज हमारे इस माशरे की 40 से 60% औरतें सिर्फ क्रश हो रही हैं। डांटे भी सुनती, कपड़े भी धोती, खाने भी पकाती, सारा दिन बेचारियाँ चूल्हे के आगे बैठती हैं, रात को मियाँ की डांट सुन के सोती हैं, और सुबह पहला जुमला ये होता है, उठ जाओ अब, ना कदरी इतनी है, दोनों तरफ गड़बड़ है। ये अगर खदीजा की बातें हो रही हैं, तो आज ऐसे मर्द भी बहुत सारे हैं जो खदीजा जैसी औरतों की कदर भी नहीं करते। तो ज़रूरत है इस बात की कि इन किरदारों को अपनी अमली ज़िंदगी में रखिए। अपनी बेटियों की शादी से पहले दर्स, और सिर्फ इजाज़त दीजिए, सिर्फ खदीजा एज अ वाइफ का लेक्चर दे दे, उस पर कोई भी बहुत है आपके शहर में माशाल्लाह देंगे। उसी फातिमा की कहानियाँ सुनी, जो मुझे इतने लंबे लंबे खत आए हैं आप लोगों की तरफ से, कि आज पढ़ के समझ आया कि फातिमा फातिमा क्यों थी, वो सरदार जन्नत क्यों थी। और पता नहीं हमें किसने क्या सिखा दिया, मुझे तो समझ नहीं आती आज हमारी मत क्यों मारी गई है। वही नीम हकीम बन के हम सबसे बड़े मुफ्ती अपने बारे में, मैं जन्नती, मैं फुला फुला, बाकी सब पता नहीं किधर अल्लाह ने मुझे डाल दिया। कुड़ कुड़ के सोते हैं, अल्लाह मुनाफिक के घर डाल दिया तूने मुझे, काफिर कह नहीं सकते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। दर्द बांटने वाली खदीजा, नबी के जख्मों पे पट्टियाँ बांधने वाली खदीजा वो थी कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को इतना खुश रखा हुआ था। आप कहते हैं कि एक दफ़ा नबूवत से पहले का किस्सा है, ज़ाहिर है अल्लाह के नबी की शादी हुई 25 साल में, नबी बने 40 साल में, 15 साल तक वो एक आम शोहर था, वो नबी शोहर बाद में बना। अल्लाह के नबी एक जगह से गुजर के आए, तो वहाँ कोई बड़ा ही गरीब कबीला था। अल्लाह के नबी घर आए तो आपके चेहरे पे दुख था। हज़रत खदीजा पूछती हैं कि आज क्या बात है, आप बड़े ही उदास से लग रहे हैं। कहने लगे मैं आज फलां कबीले से आई, बड़े ही मफलूकुल हाल हैं, बड़े गरीब हैं। कहा अच्छा, आप ऐसा करें कि ज़रा जाके ना शहर के ज़रा चंद बड़े जो काबिल भरोसा लोग हैं ना, सरदार टाइप, उनको लेकर आएँ। अल्लाह के नबी सवाल किए बगैर चले गए। इमाम राजी इस वाक़े को लेकर आए, आप ख़ुद भी पढ़िए उनकी किताब में, अरबी की बुक है। कहने लगी कि अल्लाह के नबी गए और चंद चीदा चीदा, जिसको कहते हैं मोअज़्ज़ज़ हस्तियों को ले आए। उनके आने तक हज़रत खदीजा ने अशरफियों का गोल्ड कॉइन, सबको पता है अशरफी क्या होती है, मंगनियों पे मिलती है आपको, अल्लाह होगा, अशरफियों की ढेरी थी। और इमाम राजी लिखते हैं कि वो इतनी ऊंची ढेरी थी कि जब अल्लाह के नबी उसके पीछे आए तो वो छुप गए। फिर आपने उन मर्दों को गवाह बनाया जो सरदार थे, का गवाह रहना मैं ये सारी अशरफियाँ मोहम्मद को देती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाइए जिसको मर्जी दे दीजिए। इससे जनरस कौन होगा? वो कुछ सवाब के लिए नहीं दी थी कि एक के बदले में सब असना बिला वफी कुल्ली सुम्बलत मियाँ खब्बा, हम तो तीसरा पारा पढ़ा चुके हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, अभी ऐसी कवायतें भी नहीं थी आई हुई, और उन्होंने दिया। और अल्लाह के नबी के पास क्या था, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था, आपके पास माल नहीं था, स्किल्स थी। आज भी बहुत प्यारे होते हैं वो लोग जिनकी स्किल्स और दूसरों का माल मिल जाता है ना, तो फिर दीन को तरक्की मिलती है। ऑल इन वन, लाखों में एक, वन वुमेन शो, हज़रत खदीजा, दिमाग इतना तेज, मक्का के शहर में सबसे अमीर औरतों में इनका नाम, शक्लो सूरत की खूबसूरत, कद काट की अच्छी, कपड़े पहनने में हसीन, बात करती थी तो लोग हैरान होते थे। मक्का का हर मर्द जो बड़े बड़े सरदार थे ना, वो हज़रत खदीजा से शादी के ख्वाहिशमंद थे, फितरी तौर पे होंगे, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दो दफ़ा शादीशुदा, और दोनों ही दफ़ा, इस पे बहुत लंबे इख्तलाफ हैं जिस पे मैं नहीं पढ़ती कि तलाक याफ्ता थी या बेवा थी, लेकिन ज़्यादा रिवायतों में यह कि पहले से तलाक मिली, दूसरे से खुद ली। अल्लाह छांट छांट के लाया उनको अल्लाह के नबी की बीवी बनने के लिए। आखिर उसने बीवी नहीं माँ वाला रोल भी अदा करना था। आप कहते छोटी सी बच्ची लाएं लड़के के लिए, कोई 15-16 साल की बच्ची दे दें जरा मेरे बेटे के लिए, दे ढूंढ के, कोई छोटी सी हो, गुड़िया सी हो, दुबली सी हो, गोरी सी हो, मोटी सी आंखें हो, और जिस दिन मेरे बेटे की बीवी बने ना तो बस वलीमे और पहले फेरे और 1-2 हफ्ते के बाद वो 40 साल जैसी तजुर्बाकार औरत बन चुकी हो, जो किचन में सुबह मेरे से पहले आ जाए और जो मियाँ के सारे काम भी करे और खाना भी बनाए। हमारा बिहार जी 15 साल बड़ी औरत आप लाएंगे अपने बेटे के लिए? आज आपकी बिरादरी के तो मैं कहती हूँ कि दुखी पॉइंट पे मैं हाथ रख दिया मैंने। आप कहेंगे मुझे ये सब कैसे पता? 1 साल लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो शादी नहीं करते। खदीजा 15 साल बड़ी, आप कहते हैं ये तो मेरे बेटे के जज्बात की नहीं पूरे करेगी। लेकिन खदीजा ने क्या किया, कैसे उन्होंने नबी सल्लम को पहचान लिया? आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हज़रत खदीजा का हक़ अदा करते हैं, और जो मर्द अपनी बीवी से इतना खुश है उसको कुछ मिले ना मिले, और मज़े की बात है कि उम्र में इतनी बड़ी और सारी औलाद नबी सल्लम की आपसे हुई, 6 बच्चों की माँ थी नबी के, यानी खदीजा वो है जो एक नबी के 6 बच्चों की माँ बनी, 4 बेटियाँ 2 बेटे, अपने भी पीछे से 4 बच्चे थे, टोटल हज़रत खदीजा के बतन से 10 बच्चे पैदा हुए। बहुत कुछ है, पढ़िए किताबें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। मैं तो आपको बस वो देती हूँ जिसका अमल से ताल्लुक़ है, जिन्होंने अल्लाह के नबी की वही की घबराहट को दूर करने के लिए आपको तसल्ली दी। और वाकयात से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब घबराए हुए आए तो आपने कहा कि मैं आज कुछ महसूस करके आया हूँ, और ये वाकया हकीकत मेरी भी किताबों में मौजूद है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। हज़रत खदीजा इतनी समझदार थी, कहने लगी अभी चेक करती हूँ कि ये कुछ जिन का असर है या कोई फरिश्ता है। बाल खोले, यानी आपके सामने अपनी आराइश जाहिर की और आपको अपने बाजुओं के अंदर लिया। कहने लगी अब आपको वो रूह नज़र आ रही है? आपने फरमाया अब नहीं आ रही। कहा बस फिर वो फरिश्ता है, अगर कोई बुरी रूह होती तो वो तो इंजॉय करती ऐसे मंजर को देख कर, तो हो ना हो वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है, और उसके बाद फिर वो लेकर आपको अपने कज़न वरका बिन नफल के पास गई। अल्लाह के नबी ने कहा खशी तो अला नफसी, ज़म्मे लूनी ज़म्मे लूनी, लेकिन मर्दों में अबू बकर सिद्दीक अकबर, ख़वातीन में खदीजा सिद्दीक़तुल कुबरा। किस किस को ये नस्बत पहले पता थी या उसने कभी इस पे गौर किया था? जी कभी सोचते भी नहीं हम तो, मुकामे सिद्दीकियत पे जो इंसान होते हैं ना उसमें थी। और एक और औरत का नाम भी है कुरान में सिद्दीका, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, और ईसा की माँ कहा गया, माँ मरियम नहीं कहा गया। और इनका लक़ब ताहिरा दौरे जाहिलियत में इनको मिल गया था इनके किरदार की पाकिजगी की वजह से। इनकी एक औलाद हिंद थी जो इनके पहले शोहर अतीक से पैदा हुई, इसी वजह से इनको उम्मे हिंद कहा जाता था। ज़ख्मों पे पट्टियाँ बांधने वाली और हसन हुसैन की नानी और फातिमा की माँ, नबी से निकाह के वक्त में उम्र की वो मंजिलें शुरू हो चुकी थी जहाँ अमूमन औलाद नहीं होती, मीनोपॉज की एज, लेकिन अल्लाह ने अपना काम करके दिखा दिया। माल इतना था लेकिन पसंद नहीं करती थी कि मैं जाके मर्दों में इंटरेक्शन करूँ। इन्होंने एक गुलाम रखा हुआ था मैसरा नाम का, उसको भेजती थी कि जाओ मेरा सामान बेच के इधर से उधर, जाने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। और जब उनको नबी सल्लम का पता चला, अबू तालिब नबी के जो चचा थे ना उन्होंने ही रेफ़र किया था अल्लाह के नबी को कि जाओ आप जाकर खदीजा को ऑफ़र करो कि मैं आपका सामान तिजारत ले जाता हूँ, और बाद में यही अबू तालिब बीच में आए थे कि खदीजा से निकाह की बात हुई। तो बात यह है कि वो मिसाली बीवी भी थी, मिसाली माँ भी थी, मिसाली नानी भी थी, वो मिसाली मुस्लिमा भी थी, शी वॉज आइडियल मुस्लिमा। इतना कुछ आपको दे गई कि उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, हर मौके पे आपका साथ दिया। आप कहते कि इस औरत की 2 बेटियों को दीन हक पे चलने की वजह से तलाक हुई, और वो दोनों बेटियां बाद में हजरत उस्मान की बीवी बनी। एक बेटी का गम भी बहुत होता है हमारे लिए, तो आज खदीजा ने कभी भी इन गमों को वजह बनाकर अपने आप को पीछे नहीं किया। और बात सच है, अगर आपने कभी सुनी है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वुमेन, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ है। आप तो फौरन अपना नाम देंगे। लेकिन यहाँ बात खदीजा की है। कहने वालों ने कहा कि अगर नबी सल्लम एक कामयाब इंसान थे तो उसके पीछे हज़रत खदीजा थी, मॉरल सपोर्ट करने वाली। आज की बीवियाँ ज़रा सी बात पे आपे से बाहर हो जाती हैं, घर की फिक्र नहीं, ग्रोसरी लाते नहीं, बच्चों को मैं पालूँ, डॉक्टरों पे मैं ले जाऊँ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बीवी, इन्होंने कुर्बानी दी। और आप देखिए उधर हाजरा और इब्राहिम की कुर्बानी है, अलग हो गए और अल्लाह का घर बन गया और जमजम का चश्मा फूट गया। और इधर ये बीवी नबी को इजाज़त दे रही है कि जाइए आप काम करें, जाइए आप वही के ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें। गारे हिरा में जा जा कर अल्लाह के नबी कई कई दिन रहते थे, सत्तू खोल कर लेके जाती थी। तो बहरहाल आज की औरत को हज़रत खदीजा को रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है, फिल्मों की हीरोइन को नहीं, ड्रामों वालों को नहीं, मॉडल्स को नहीं। वो ख़वातीन नहीं जो अपने जिस्म और अपने हुस्न और अपनी मुस्कुराहट को बेच कर पैसा कमाती हैं। फिर हमारी बेटियां खदीजा जैसी होंगी। आज के बाद आप भी जब अपने बेटे का रिश्ता ढूंढे ना, या अपने पोतों और नवासों के लिए, तो खदीजा जैसी ढूंढिएगा। अगर इस खूबियों वाली 2-4 साल बड़ी छोटी भी हो गई, कुछ भी नहीं होगा। और शाबे अभी तालिब में ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ गुजारी, दरख्तों के पत्ते खाए, रात को पानी में पत्ते उबाल कर सहाबा पीते थे, जानवरों की तरह जिस्म से मेंगनियाँ निकलती थी, पानी पास नहीं था, उसी में हज़रत खदीजा कमज़ोर होती गई। और बस उसके बाद 10 नबी में रमज़ान ही का महीना था कि हज़रत खदीजा अल्लाह को प्यारी हो गई। और आपको पता है कि अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफ़ात के बीच में कितना वक्त है? सिर्फ 3 दिन। एक ही साल है अमुल हुज़न, 10 नबी, और जिसको कहते हैं गम मन अला गम, नबी के लिए तो ये साल कमर तोड़ देने वाला था। तभी तो फिर अल्लाह ने इसके बाद आपको मेराज करवाई थी कि आप उदास बहुत रहते थे। और जब इनकी तदफीन का वक्त आया, ख़ुद नबी सल्लम इनकी कब्र में उतरे और फिर इनको दफनाया। नमाज जनाजा नहीं हुई थी क्योंकि उस वक़्त तक नमाज जनाजा के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। और इस तरह से ये पुरसकून सी औरत ज़िंदगी की खूबसूरत बहारें अल्लाह और उसके दीन और नबी को देकर इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह ताला इनकी कब्रों को ठंडा करें। आप सब एक काम तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे तो इत्तफाक़ हुआ, जब भी अल्लाह आपके लिए हज उमरे को आसान करे जाएंगी तो पूछ के हज़रत खदीजा की कब्र को दूर से चाहे ज़रूर देखिएगा। कितनी पुरसकून नींद होगी खदीजा की कब्र में। हम सारा सुकून सारी खुशी इस दुनिया में लेना चाहते हैं ना, वो कुछ वहाँ के लिए भी रख दो। कितना माल होगा खदीजा के पास कब्र में, क्योंकि अपना सारा माल दे दिया। हम तो दुनिया से ही अपने दिल को ना पूरा कर पाएँ। क्या जिनका नाम सुन के दिल एहतराम से झुक जाते हैं क्योंकि इन्होंने उस दौर में बातें सुनी थी। अल्लाह करे कि जन्नत में मैं और आप उनको देख सकें और पूछें कि सुनाएं क्या दिल पे गुजरती थी जब आप पहाड़ों पे चढ़ती थी, और किस खुशी से चढ़ती थी, या आपको इतनी मोहब्बत कैसे हो गई अपने शौहर से, कौन सा तवीज़ पहना था, कौन सा आपने वजीफ़ा किया था शौहर की मोहब्बत का, और ये आपके शौहर को आपसे कैसे मोहब्बत हो गई थी कि वो आपके होते हुए किसी और को देखते ही नहीं। यानी हज़रत आयशा कहती हैं मुझे नबी की मौजूद बीवियों में किसी पर रश्क नहीं आया, कभी आया भी तो खदीजा पे आया। एक दफ़ा कह ही दिया, क्या हो गया, वो सुर्ख होंठों वाली और चौड़े मुँह वाली औरत को नहीं भूलते, वो बुढ़िया। अब अल्लाह ने आपको कुंवारी और जवान औरतें दी, अपने बारे में इशारा था आयशा कि मैं खदीजा को नहीं भूल सकता। उनकी बहन को देखकर अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे, शुबाहत पड़ती थी। और आपकी बेटी का हार जब अपने अमर बिन अलास के रैंसम फिदिये में देखा तो रो पड़े, कहा मुझे खदीजा याद आ गई। गोश्त बांटते तो सबसे पहले खदीजा की दोस्तों को देते, इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की कि हम देखें। आप सोचें कि आज आपको कोई कह दे कि अल्लाह आपको सलाम भेजता है, ये तो होगा नहीं। जिब्राइल भेजते ये नहीं होगा। कोई आपको वाइट हाउस से सलाम आ जाए ज़रा। मैंने देखा जब अमेरिकन पासपोर्ट मिलता है ना, जो लोगों की उस वक्त कैफियत होती है ना, अगर आप में से कोई गुजर चुका है उस मरहले से तो वो जानता है। मैं देख रही थी तो मैं सोच रही थी अल्लाह अकबर, इतनी मरूबियत कि आज हमें ब्लू पासपोर्ट मिल रहा। ग्रीन कार्ड तो बहुत सारों को मिल जाता है ना, पासपोर्ट कम को मिलता है। लोग वहाँ खड़े होके तस्वीरें खिंचाते हैं, प्लेज करने के लिए खड़े होते हैं। हज़रत खदीजा को क्या लगा होगा जब आसमान से सलाम आया होगा, और जो कार्ड मिलता है ना, तो जो उस वक़्त का प्रेसिडेंट होता है ना, उसके सिग्नेचर्स होते हैं, बुश है या फलाँ या फलाँ, लोग उसकी तस्वीरें खिंचाते हैं, वहाँ पूरा फोटोग्राफी हो रही होती है। हम तो इतने कमज़र्फ हैं कि चार हमारे ही जैसे लोग हमारी तारीफ़ कर दें तो हम फ़ख्र से भूल जाते हैं। बीबी खदीजा को क्या महसूस हुआ होगा, ये सब जानने के लिए आपको मुझे जन्नत में जाना पड़ेगा, और जन्नत में जाने के लिए हमें मरना पड़ेगा, और मरने से पहले रा दिया तो मर दिया की आवाज़ सुननी पड़ेगी कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जी ला रब्बी की रा दिया तो मर दिया। ये लोग दुनिया में जो थोड़ी थोड़ी मेहनतें थोड़े थोड़े वक्त में करके चले गए ना, अब तक उसका फल खा रहे हैं। आप कहते हैं ना कहीं पैसे लगा दो तो प्रॉफिट आता रहे, चलो हमारे बच्चों के लिए आता रहे, ये बेटी का, ये नवासी का, ये उसका, ये लोग दुनिया में इन्वेस्टमेंट करके डाल गए, और आप उनकी कब्रों में जब इसका प्रॉफिट और इनकी स्टेटमेंट्स जाती होंगी तो हैरान होते होंगे। कितने को दिन गालियाँ खाई, पत्थर सहे, बातें सुनी, क्या कुछ ना हुआ, लेकिन असल बात ये है कि हक पे खड़े हुए बंदे को समझ नहीं आता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उस प्यारे नबी की इस प्यारी सी बीवी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये मुकाम बहुत बड़ा है, ये रुतबा है सिवा। और इस पे एक रिवायत कि कैसे हज़रत खदीजा तुल कुबरा को अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की ज़ुबान मुबारक से भी खुशखबरियाँ दिलाईं, ये बुखारी की रिवायत है 3820, अबू हुरैरा रावी है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा आपके पास एक बर्तन लिए आ रही हैं जिसमें सालन, या फरमाया कि खाना है, या फरमाया कि पीने की चीज़ है, यानी साहबी को नहीं पता कि क्या कहा। जब वो आपके पास आए तो इनके रब की जानिब से इन्हें सलाम पहुंचाइएगा और मेरी तरफ से भी, यानी एक ही दफ़ा में जिब्राइल का और अल्लाह का सलाम, और इन्हें जन्नत में मोतियों के एक महल की बशारत दे दीजिएगा जहाँ न शोर व हंगामा होगा और न तकलीफ़ और थकन होगी। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हु। अल्लाह ताला ऐसे खूबसूरत मुकाम पे हमें भी फ़ाइज़ करें।